नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार ने घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। सोशल मीडिया पोस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह निर्णय पश्चिम एशिया संकट के बीच लिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को बढ़ती कीमतों से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि डीजल के निर्यात पर 21.5 रुपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर 29.5 रुपये प्रति लीटर शुल्क लगाया गया है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने हमेशा नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में जारी रुकावट के बीच दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के असर से भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए सरकार ने उपभोक्ताओं पर बोझ डालने के बजाय खुद इसका असर झेलने का विकल्प चुना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि पिछले एक महीने में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग $122 प्रति बैरल हो गई हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों को तेल निर्यात करने वाले रिफाइनरियों को भी निर्यात कर का भुगतान करना होगा। श्री पुरी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम एशिया संघर्ष पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे और राज्यों की तैयारियों तथा योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक में टीम इंडिया की भावना से समन्वित प्रयासों को सुनिश्चित करने पर बल दिया जाएगा। हालांकि आदर्श आचार संहिता के कारण चुनाव वाले राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के दोनों सदनों में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर भारत का रुख स्पष्ट किया था। श्री मोदी ने कहा था कि सरकार पेट्रोल, डीजल, तेल, गैस और उर्वरकों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज स्पष्ट किया कि भारत में लॉकडाउन की अफवाहें पूरी तरह से झूठी हैं और सरकार के विचार में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री पुरी ने कहा कि वैश्विक स्थिति में लगातार बदलाव हो रहे हैं, ऐसे में सरकार ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं और आवश्यक वस्तुओं पर बारीकी से नजर रख रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नागरिकों के लिए ईंधन, ऊर्जा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। केरलम में विधानसभा चुनावों के लिए अंतिम मतदाता सूची कल रात प्रकाशित की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
अंतिम मतदाता सूची के अनुसार केरल में कुल 2,71,42,952 मतदाता हैं। इस सूची में 19 वर्ष से कम आयु के 4,66,408 नए मतदाता भी शामिल हैं। गौरतलब है कि राज्य में 110 वर्ष से अधिक आयु के 54 मतदाता हैं। SIR के बाद पात्र हुए मतदाताओं सहित अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन और नामांकन वापसी प्रक्रिया के पूरा होने के साथ केरल में जोरदार चुनावी अभियान शुरू होने वाला है। तिरुवनंतपुरम से स्मित एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
पुदुचेरी में कल उम्मीदवारों के नामों की अंतिम सूची आने के साथ चुनाव प्रचार और चुनावों की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। चुनाव कार्यालय के अनुसार 71 उम्मीदवारों के नाम वापस लिए जाने तथा कई नामों को कल हटाए जाने के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश के 30 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 294 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। असम में विधानसभा चुनावों के लिए 67 उम्मीदवारों ने कल अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके साथ ही राज्य विधानसभा चुनावों में कुल 722 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर स्थित उत्तरी कमान मुख्यालय में कल अलंकरण समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह के दौरान सेना के जवानों को उनकी असाधारण सेवा और वीरता के लिए 92 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में 51 व्यक्तिगत सम्मान और 41 इकाई प्रशस्ति पत्र शामिल हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर सहित विभिन्न अभियानों में प्रशंसनीय प्रदर्शन को लेकर हैं। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप में कल वर्तमान चैंपियन भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने 30 मिनट में विशाल यादव के गोल से बढ़त हासिल की। ग्रुप बी के मुकाबले में कल भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।